आपकी कॉम पिछले 4 साल से करप्शन करप्शन खेल रही है, और इस कॉम में से 10 लोगों को अगर पूछ लिया जाए कि टैक्स इवेजन क्या है और करप्शन असल में हुई क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 10 में से 1 बंदा भी बता सकेगा। तो इस कॉम को आप एजुकेट कैसे करेंगे? और ये वही कॉम है जिसने चावलों की देख पे वोट दिए हैं, तो ये कॉम एक अच्छे हुक्मरान कैसे चूज कर सकेगी जो कॉम इस तरह की हरकतें कर रही है जो आपके सामने हैं?
ये कौम जैसी है इसी ने अपने हुक्मरान मंतखब करने। आपको मुझे ये ख्याल होता है कि इस कौम को बेहतर होना चाहिए, तो हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए हमने इसको बेहतर करने के लिए क्या किया है। बल्कि कौम तो एक तरफ अपने आप ही को बेहतर करने के लिए क्या किया है, यानी हुक्मरानी का फैसला मेरे ऊपर या आपके ऊपर तो नहीं होना ना, पूरी कौम पर होना है। या तो फैसला कर लीजिए कि हम में से हर आदमी अपना हुक्मरान खुद चुनेगा, तो फिर मैं और आप दोनों मिल बैठ के कोई बहुत अच्छा हुक्मरान चुन लेंगे। इस वक्त यही कौम है जिसने एक मुल्क की सूरत में अपने आप को मुनज़्ज़म किया है, उसका एक वतन है, वो पूरी कौम ही ये हक रखती है कि वो फैसला करे। अगर उसके सिवा किसी और के पास ये इख्तियार है तो पिन पॉइंट करके बताना चाहिए किसके पास है। देखिए ना, ये जो मुबहम बातें हैं ये करनी तो बहुत अच्छी लगती हैं, वाकये के लिहाज से इसका जवाब क्या है? आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग होते थे जस्टिस कैकाउस, उन्होंने एक मुकदमा दायर किया लाहौर हाई कोर्ट में और ये कहा कि मुत्तकी परहेजगार लोगों को हुक्मरान होने चाहिए। बड़ी बहस हुई उस पर, कभी उस बहस को आप पढ़िए। उसके बाद आखिर में जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये मुत्तकी परहेजगार लोग कहाँ से आएंगे, यानी कौन फैसला करेगा? तो उन्होंने कहा आप कर दें। असल में ये इतना आसान मामला नहीं है, आपको ये तो हक हासिल है कि आप अपनी राय दें, लेकिन आखिरी फैसला किसने करना है? मैंने आपसे अर्ज किया कि जितनी दुनिया की तारीख है उसमें यह फैसला या बंदूक और तलवार ने किया है, या खुदा ने किया है, या लोगों ने किया है। आपके पास कोई चौथा इंतखाब है तो मुझे बताएं। यानी अल्फाज बोलने तो बहुत आसान है, अब रह गई ये कौम। तो भाई हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि इसको एजुकेट करें। इस वक्त जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो भी इसी मकसद से कर रहे हैं। जिसको बहुत दर्द है वो ज़रा और ज़्यादा जद्दोजहद करे, तगोदो करे, हादिये बरहक होकर निकले और अपनी कौम की तामीर का काम करें। सूरत हाल ये है कि हम 2 दिन में नतायज चाहते हैं। कौमी सतह के नतायज तारीख इंसानी में कब 2 दिन में निकले हैं? यानी ये जो जमहूरियत इस वक्त आप मगरब में देखते हैं, क्या ये चश्म जदन में आ गई थी, 2 दिन में आ गई थी? आप इंग्लिस्तान में जाएं जो जमहूरियत की माँ है, आप ये देखेंगे कि वहाँ जो मुख्तलिफ ऐवानों के स्पीकर हैं वो कत्ल हुए हैं, बादशाहों की नाशें पार्लियामेंट में गिरी हैं, वहाँ क्रॉमवेल जैसे लोगों ने कब्जे किए हैं, बेशुमार मराहिल से गुजरने के बाद कुछ आदाब कायम हो गए, कुछ कायदे बन गए हैं, कुछ जाब्ते इख्तियार कर लिए गए हैं, और कौम भी बैसियत मजमुई बाज तासुबात से बालातर हो गई है। ये देखिए ना, लंदन के शहरियों ने इस ज़माने में जबकि इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडा हो रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात ज़्यादातर उन्हीं से मंसूब पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों से बालातर होकर एक पाकिस्तानी और मुसलमान का इंतखाब कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि लोगों में एक ख़ास तरह की मेच्योरिटी है, यानी वो इस तरह के प्रोपेगंडे से मुतासर नहीं होते। क्या हम भी नहीं होते? मैं तो जिस वक्त सोशल मीडिया को कभी देखता हूँ तो मुझे ये मालूम होता है कि जिन लोगों के बारे में आखिरी दर्जे का हुस्न ज़न था वो भी किस पस्ती में उतर कर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अलमिया बैसियत मजमुई पूरी कौम का है। पूरी कौम के मामलात को 2 दिन में दुरुस्त करने का ख्वाब हो सकता है आप नौजवान हैं देख लें, लेकिन मैं इस वक्त बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि कौमों की तामीर इतनी आसान नहीं होती। हमें तालीम के सारे ज़राए इख्तियार करने चाहिए, फॉर्मल भी, इनफॉर्मल भी, रस्मी भी, गैर रस्मी भी, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कौम को एजुकेट करें। ये एजुकेशन मज़हब में भी होनी चाहिए, समाजियात में भी होनी चाहिए, ये साइंसी फ़िक्र में भी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप अपनी कौम से अच्छे रवैये की तवक्को कर सकते हैं। तो इस अमल में शरीक हो जाइए। अगर आपके पास इससे हटकर कोई रास्ता है कि यक बयक पूरी की पूरी कौम वो झूठ भी बोलती हो, बद्यांती भी करती हो, मिलावट भी करती हो, गलत दवाएं भी बनाती हो, लेकिन हुक्मरान कहीं आसमान से अबू बकर उमर आ जाए, ये कभी नहीं हुआ, ना हो सकता, मुमकिन नहीं।
क्लियर है जी?
सर, दूसरा सवाल आपकी जो फिक्र में रियासत के मुतल्लिक है, जो रियासत का कॉन्सेप्ट है, सर आपके नज़दीक रियासत इस्लामी या मजहबी नहीं होती कोई भी, लेकिन आपके नज़दीक अगर कोई भी फैसला करना है, जैसे आपने अफगानिस्तान का अभी बात की है, तो वो नज़म इज्तमाही को ही करना होगा, यानी रियासत को ही फैसला करना होगा, तो सर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है?
नहीं, देखिए एक चीज़ है रियासत, रियासत का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान हमने बना लिया, ये एक मुल्क है, इस मुल्क का एक रकबा है, इसमें एक इज्तमाही नज़म कायम कर दिया गया है, इस इज्तमाही नज़म के कुछ हदूद क्यूद भी तय कर दिए गए हैं, लिहाजा अब ये एक मुनज़्ज़म मुसलमानों का इज्तिमा है, इसमें अनारकी नहीं है, इसी को अरबी ज़ुबान में अल जमा कहा जाता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि अलैकुम बिल जमा, तो इसी के साथ वाबस्ता रहने का हुक्म दिया, ये रियासत है। इस रियासत का नज़म चलाने के लिए हम अपने हुक्मरान मुंतखब करते हैं, वो इंसान होते हैं, यानी रियासत अपनी ज़ात में तो एक गैर शख्सी वजूद है, मुल्क है, उसका एक रकबा है, उसके कुछ तसव्वुरात हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कौन है? वो इंसान है, जीते जागते इंसान। इंसान का मज़हब भी होता है, नज़रिया भी होता है, फ़िक्र भी होता है। ये उसूल तय कर लिया गया कि जिसके पास अक्सरियत होगी वो फैसला करेगा, यानी अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है, तो पीपल्स पार्टी को हक हासिल है कि वो अपने मंशूर के मुताबिक यहाँ फैसले करें, कवानीन बनाए, यह हक देते हैं ना आप। मुस्लिम लीग को अक्सरियत हासिल हो गई है, वो फैसले करें, तहरीके इंसाफ को हैसियत हासिल हो गई है, वो फैसले करें, या किसी और जमात को। तो रियासत तो एक मुजर्रद वजूद रखती है जिसमें इख्तलाफ का कोई सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ आप ये जानते हैं कि अक्सरियत की बुनियाद पर जो हुक्मरान होगा, मुमकिन है कि 49% लोग उससे इख्तलाफ रखते हैं, इसके बावजूद वो हक आप देते हैं और कानून साजी का हक भी देते हैं। जब उनको कानून साजी का हक देते हैं तो उनका कल्चर भी है, उनका मज़हब भी है, उनकी तहजीब भी है, उनके नज़रियात भी हैं, उनका प्रोग्राम भी है, उनको पूरा हक है कि उसके मुताबिक करें। वहाँ मज़हब भी आएगा, वहाँ सकाफत भी आएगी, वहाँ कौम के रसूम रवाज भी आएंगे, वहाँ पार्टी का मंशूर भी आएगा। तो ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। मज़हब का मुखातब कौन है? वो लोग हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। वो अगर मुसलमान हैं तो उन्हें अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, अल्लाह के पैगम्बर की इताअत करनी चाहिए। उनकी अक्सरियत मुसलमान नहीं है या नाम के मुसलमान है, हकीकत में इस्लाम को कबूल नहीं करते, तो वही नतीजे निकल आए। तो इसका मतलब यह है कि मज़हब मुखातब करेगा या आला अकदार मुखातब करेंगे हमेशा इंसानों को। इसको मैंने ताबीर किया था कि मज़हब रियासत को मुखातब नहीं करता, मज़हब फ़र्द को मुखातब करता है उसकी तमाम हैसियतों में। यानी जब मैं तनहा हूँ मुझे तनहा मुखातब करेगा, मैं बाप बन गया हूँ तो बाप की हैसियत से मुखातब करेगा, मैं कारोबार में चला गया हूं तो एक कारोबारी आदमी की हैसियत से मुखातब करेगा, मैं किसी इदारे का सरबरा हूं तो उस हैसियत से मुखातब करेगा, मैंने शादी कर ली है तो मेरी हैसियतें वजूद में आएंगी उससे मुखातब करेगा, मैं किसी रियासत का हुक्मरान बन गया हूं, मैं किसी पार्लियामेंट का रुकन बन गया हूं उस हैसियत से मुखातब करेगा, मैं अदालत की कुर्सी पर बैठ गया हूं तो मुझे उस हैसियत से मुखातब करेगा। तो जब मैं ये कहता हूं कि फ़र्द मुखातब है तो उसका मतलब इंसान मुखातब है, यानी कोई इंसानों से मुजर्रद शख्सियत मुखातब नहीं है, ये मतलब है उसका।